You are listening to Upanishads Simplified by Dr. Shisham Agarwal on the Red Podcast Network.
दोस्तों थर्ड आई क्या है, आज्ञा चक्र क्या है? बहुत बार लोग कहते हैं कि हमें अपना आज्ञा चक्र खोलना है, अपनी थर्ड आई खोलनी है, अपना त्रिनेत्र खोलना है। हमारे अंदर, हम सब के अंदर शिव जी का एक त्रिनेत्र है, हमें वो नेत्र अपने अंदर खोलना है। और जैसे ही वो नेत्र खुलेगा हम सब त्रिकालदर्शी हो जाएंगे। तो वो नेत्र कहाँ है और कहाँ निहित है और उसको किस प्रकार से हम खोल भी सकते, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे आपके फेवरेट पॉडकास्ट उपनिषद सिंप्लीफाइड। मेरे साथ, मैं हूँ शीशम अग्रवाल। मैंने 7 डॉक्टरेट्स करी हैं, मांडू की उपनिषद की शोपनिषद में डॉक्टरेट करी है। उपनिषद जीवन की वो कुंजी है जो आपके जीवन को सुलझा सकती है, आपके जीवन को सरल बना सकती है, आपके जीवन को बहुत सॉर्ट आउट कर सकती है। अगर आपके मन में अनंत प्रश्न है और आपको उन प्रश्नों का किंतु परंतु उपाय नहीं पता, आपका जीवन एक कुरुक्षेत्र बन गया है, आपका शरीर एक कुरुक्षेत्र बन गया है और आपके अंदर भी कौरवों और पांडवों की तरह हमेशा किसी न किसी प्रश्न को लेके, किसी न किसी मुसीबत और उलझन को लेके एक द्वंद बना रहता है, तो उपनिषद उन सभी द्वंद का उत्तर अपने अंदर समाहित करके दे। अगर आप भी इस तरह के द्वंद से गुजरते हैं, इन परेशानियों से गुजरते हैं, अपने जीवन को और सरल बनाना चाहते हैं, तो जरूर सुनिए हमारे पुराने एपिसोड्स भी और अपने जीवन को लाभान्वित करें। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। दोस्तों थर्ड आई क्या है, आज्ञा चक्र क्या है? हमारी भ्रिकुटियों के सेंटर में, मतलब आपकी दोनों आईब्राउज के सेंटर, जहां पर आप बिंदी लगाते हैं, लेडीज बिंदी लगाती हैं या कुमकुम लगाती हैं, या फिर जब मंदिर जाते हैं तो पंडित जी तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहीं पर हमारा आज्ञा चक्र होता है, हमारी थर्ड आई होती है, हमारा शिव नेत्र होता है। और यहीं पर अगर आप लगातार ध्यान लगाएं तो कहते हैं कि आप अलौकिक हो जाते हैं, आप पारलौकिक हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि थे प्राचीन काल में और आज भी कुछ ऐसे दिव्य लोग हैं जिनको आपको देखते ही आपका पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों दिखने लगता है, मतलब आपका भूत भविष्य और वर्तमान, उनको तीनों की अनुभूति हो जाती है आपको। तो उनमें ऐसा क्या है, उनका थर्ड आई, उनका त्रिनेत्र बहुत ज्यादा एक्टिव, इसीलिए बहुत बार लोग मेडिटेशन के द्वारा अपने त्रिनेत्र को सिद्ध भी करना चाहते हैं, अपने आज्ञा चक्र को, अपने अजना नेत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र है, मतलब अगर ये ग्लैंड, ये आपका चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो ये शरीर के सारे ही पहले तो ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। और अगर एक व्यक्ति अपने आप में इतना संपूर्ण हो जाता है कि उसका आज्ञा चक्र खुल जाता है, तो जब वो आपको एक टक देखेगा तो आप भी मजबूर हो जाएंगे उसी तरह से बिहेव करने में जैसा वो चाह रहा है आपको बिहेव करने, जैसी वो आपको आज्ञा दे रहा। जब हम ये कहते हैं कि हमें अपने अंदर पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को सिद्ध करना है, जब हम कहते हैं कि हमें अपने अंदर उस शक्ति को सिद्ध करना है कि हमारी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना पूरी हो जाए। आज के परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में बहुत चर्चा भी होती है, यूट्यूब पे अनंत वीडियोज हैं इस बारे में कि आप अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कैसे। तो उसकी एकमात्र सबसे बड़ी कुंजी है कि आप अपने आज्ञा चक्र को सिद्ध करें। अगर आप अपने आज्ञा चक्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आप जो भी आदेश करेंगे, जो भी आज्ञा करेंगे, वो अपने आप सिद्ध हो जाए। कितनी बार हम ऐसा देखते हैं रामायण के सीरियल में, महाभारत के सीरियल में, या और भी कुछ ऐसे सीरियल्स जो कि प्राचीन कथाओं पर बने हैं या हमारे पुराणों पर बने हैं, तो हम देखते हैं कि किसी भी साधु ने कमंडल में जल लिया और जो भी उनकी मनोकामना थी या उनके सामने जो शरणार्थी आया, जो जातक आया, उसने जो मांगा, उन्होंने जैसे ही वो जल छिड़का तो वो चीज सिद्ध हो गई, वो चीज फलित हो गई, उसकी मनोकामना पूरी। तो ये किस प्रकार होता है, जब आप अपना आज्ञा चक्र सिद्ध कर लेते हैं तो वो उसी पल फलित होने लग जाए। अब अगला प्रश्न ये है कि ये करता है, ये बहुत ही सरल है, परंतु इसको बहुत समय के लिए गुप्त रखा गया, क्योंकि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति इसको सिद्ध कर लेता है या किसी ऐसे व्यक्ति के पास ये ताकत चली जाती है तो वो उसका नेगेटिव, उसका नकारात्मक प्रभाव भी सिद्ध कर लेगा। और ये चीज हमारे जीवन में भी होती है, कई बार जब आप कुछ सोचते हैं तो अगर अच्छा सोचते हैं तो अच्छा फलित होता है, नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव फलित होता है। तो हमें ये समझ आ जाता है कि हम जो कुछ भी मनोकामना करते हैं या अपने जीवन को अपने थॉट्स के बेसिस पे जैसे भी घुमाते हैं वो वैसे घूम जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो आपके थॉट्स भी कहाँ से रेगुलेट होते हैं, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, आपके ब्रेन से रेगुलेट हो रहे हैं, जो एग्जैक्टली आज्ञा चक्र की लोकेशन भी। तो जब आप आज्ञा चक्र को साध लेते हैं तो आपको अपने थॉट्स कंट्रोल करने आ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी ऊर्जा जो कि आप शरीर से वेस्ट कर रहे थे, जो निरर्थक बह रही थी, अब आप उस सब को संचय करके अपने आज्ञा चक्र से उस पार को फोकस कर लेते हैं। और जैसे ही उसको फोकस करते हैं, अपने आज्ञा चक्र को अपनी मनोकामना का एपिसेंटर बनाते हैं, आप वो सब कुछ फलित कर सकते हैं जो कि आप करना चाहते हैं। अब प्रश्न ये है कि इसको करना क्या। दोस्तों, हर एक चक्र की अपनी एक साउंड भी। हमारे शरीर में 7 मेजर चक्र हैं, जिसके बारे में हम पहले के पॉडकास्ट में भी चर्चा कर चुके हैं। हर एक चक्र की अपनी एक साउंड है, एक स्मेल है, एक कलर है, एक सिंबल है। और ये कोई टू डिमेंशनल फिगर नहीं है, ये एक स्फेरिकल फिगर, एक जियोमेट्रिक फिगर है, जो कि सेक्रेट ज्योमेट्री में डिफरेंट प्रकार से पढ़ी भी जाती है, अलग प्रकार से पढ़ी भी जाती है। तो अगर एक हर एक चक्र को एक स्फीयर के फॉर्म में देखा जाए तो आज्ञा चक्र इंडिगो कलर का माना जाता है, गहरे नीले रंग का माना जाता है। और जब आप वहां पर ध्यान लगाते हैं तो आज्ञा चक्र की जो साउंड है वो ओम ही है, प्रणव की साउंड है। और ओम या प्रणव की साउंड इसलिए है क्योंकि ओम और प्रणव ही पूरे ब्रह्मांड में निहित है। यही एक ऐसी प्रीमोडियल साउंड है, एक ऐसी साउंड है जो कि अजर है, अमर है और हमेशा से निहित थी। इसको किसी ने डिस्कवर नहीं किया, इसको किसी ने प्रपाउंड नहीं किया, इसकी किसी ने खोज नहीं करी, सिर्फ इसकी रियलाइजेशन करी है, इसकी अनुभूति करी है। जो ऑलरेडी था, सिर्फ इसको और ज्यादा महसूस कर लिया। सबसे ज्यादा जब हमें अनुभूति होती है तो ये या वो हमारे अनहत चक्र से हमें होती है, हमारे हार्ट सेंटर से होती है, या फिर आज्ञा चक्र से होती है। तो अगर हम अपने आज्ञा चक्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें, चौकड़ी मार के बैठें, कमलासन में बैठें या पद्मासन में बैठें। इससे आपका शरीर एक परपेंडिकुलर बना लेगा। अपने दोनों हाथों को या तो ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, मतलब इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करें, अपनी तर्जनी को और अपने अंगूठे को टच करें और बाकी सारी फिंगर्स को स्ट्रेट रखें। अपने हाथों को आसमान की, अपनी हथेलियों को आसमान की तरफ देखता हुआ रखें, अपने घुटनों पर रख सकते हैं या फिर ध्यान मुद्रा में। गहरा लंबा श्वास लें और प्रत्येक श्वास के साथ अपना ध्यान पहले आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। जब आपको लगे कि आपका एक कनेक्ट बन गया है अपने आज्ञा चक्र से, फिर अपने श्वास को इस तरह से खींचें जैसे आपको लगे आपकी स्पाइन से आपका श्वास ऊपर जा रहा है और ओम का उच्चारण करें। अब यहाँ पर भी दो थॉट्स हैं। कई बार लोग कहते हैं कि जब आप श्वास खींचें तो आप ओम की ध्वनि को अपने मन में ही उच्चारित करिए, और कई बार कहते हैं कि जब आप ओम चांट कर रहे हैं तो वो लाउडली चांट करिए, ताकि जो आप सुन रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वही आप सुने। तो मेरा यहाँ पे ये सुझाव है कि कुछ दिनों के लिए आप शायद ओम को लाउडली चांट करें, उसके बाद धीरे धीरे करके आप उस लाउड चांट को बंद कर दें और अपने मन में ही ओम का उच्चारण करें जब आपको लगे आपका ध्यान सद गया। धीरे धीरे करके ये आज्ञा चक्र आपके कंट्रोल में आने लगे, बहुत सारे वेस्टफुल ख्याल जो आपके मन में आते हैं, विचार आते हैं, वो बंद हो जाएंगे। पहला। दूसरा, जब आपको लगे कि आप अपने मन को नियंत्रित कर पा रहे हैं, आपका मन अब चंचल बंदर की तरह या जानवर की तरह इधर उधर नहीं जाता, धीरे धीरे करके अपनी रिंग फिंगर अपने आज्ञा चक्र के ऊपर छुआ लें, वही स्थान जहां आप बिंदी लगाते हैं। आप श्वास को पुनः खींचे अपनी स्पाइन से, अपने मेरुदंड से ऊपर की तरफ खींचे, वहां पर एक नीले रंग के बॉल को विजुअलाइज करें, इमेजिन करें, उसमें देखें कि ओम लिखा हुआ है, और श्वास खींचते हुए अपने मन से ओम का उच्चारण करें और इस फिंगर को हल्के से थर्ड आई पर प्रेशर करके रखें। आप अपने हाथ को किसी चीज का सपोर्ट दे सकते हैं, तकिए पे रख सकते हैं, या कोई ऐसे अगर लकड़ी का स्टूल हो तो उससे अपनी कोहनी को सपोर्ट दे सकते हैं ताकि आपका हाथ आसमान में रहे और आपकी उंगली आपके थर्ड आई को टच करती रहे। और उस अनुभूति को जितना ज्यादा आप महसूस करेंगे, ओम की शक्ति को जितना ज्यादा आप महसूस करेंगे अपने थर्ड आई पर, जितना ज्यादा महसूस करेंगे अपने थर्ड आई पर, उतना ही ज्यादा आपका थर्ड आई आपके कंट्रोल में आता चला जाएगा। जितना ज्यादा आपका थर्ड आई आपके कंट्रोल में आएगा, उतना ही ज्यादा आपके अंदर आपकी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन बढ़ जाएगी। और फिर आप जो भी आज्ञा देंगे, ब्रह्मांड की शक्ति, आपके अंदर की शक्ति, उस तरह से उन चीजों को फलित करने लग जाएगी जिस तरह से आप उसको साधना चाहते हैं। दोस्तों एक यहाँ पे और भी बात है, क्या हर मनोकामना इतनी सिद्ध है कि हमें उसे फलित करना चाहिए? तो पहले तो एक लिस्ट भी बना ली कि आप एक्चुअली किन चीजों को साधना चाहते हैं, किन चीजों को फलित करना चाहते हैं। और जब भी अपने मन में कोई मनोकामना रखें तो आगे के 5 साल सोच लें, आगे के 10 साल सोच लें कि अगर ये मनोकामना फलित होती है तो अगले 5 सालों में आपका जीवन कैसा होगा, अगले 10 सालों में आपका जीवन कैसा होगा। अगर आपकी लिस्ट में 50 चीजें हैं तो आप मान लीजिए कि मात्र 5 ही रह जाएंगी, क्योंकि आपको केवल ऐसा लगेगा कि केवल 5 चीजें साध लेते हैं तो आपका जीवन सुखमय होगा और संपूर्ण होगा। दोस्तों किसी भी चीज को जब आप फलित करना चाहते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने जीवन में सिर्फ उस मनोकामना की सिद्धि की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हम इस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि अगर ये चीज मेरे जीवन में आ गई, ये व्यक्ति विशेष मेरे जीवन में आ गया, अगर मेरे जीवन में ये चीज फलित हो गई तो मेरा जीवन और संपूर्ण हो जाए, मुझे और ज्यादा खुशी का अनुभव होगा, मुझे और ज्यादा होलसमनेस फील होगी, मुझे और ज्यादा कंप्लीशन फील होगा। तो हम असली में अपनी इच्छाओं के पीछे इसलिए नहीं भाग रहे क्योंकि हमें अपनी इच्छाओं से प्रेम है, हमें अपने अंदर की होलसमनेस से प्यार है, हमें अपने अंदर की संपूर्णता से प्यार है, हमें अपने अंदर के जीव से प्यार है। अगर कोई व्यक्ति विशेष लगभग 3 महीने से 6 महीने तक इस साधना को करता है तो वो अपने आज्ञा चक्र को धीरे धीरे करके कंट्रोल करना प्रारंभ कर देगा, परंतु इस कंट्रोल के साथ और अपनी इच्छा शक्ति को साधने के बाद ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे अंदर एक बुद्धि हो, विवेक हो, एक विजडम हो कि हम किसी भी चीज को किस तरह से साधना चाहते हैं, किस प्रकार से उसको नियंत्रित करना चाहते हैं और हमारा हेतु क्या है। तो एक बात तो ये है कि आप डिजायर मैनिफेस्टेशन पे काम करें और दूसरा ये है कि आपको ये पता हो कि आपकी ये डिजायर आपको कहाँ लेके जाए, और अगर आपको दोनों के ही आंसर्स में संपूर्णता नजर आती है और आपको मेल नजर आता है तो जरूर आप अपने आज्ञा चक्र को साधकर अपनी उस इच्छा के प्रति काम करें ताकि उससे न केवल आपका भला हो बल्कि जन जन का भला हो और सर्वोच्च भला। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विराम लेते हैं, हम मिलेंगे आपसे हमारे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे एपिसोड लगातार आप तक पहुंच रहे हैं और आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे एपिसोड्स को सुन रहे हैं। बहुत सारे हमें DMs आते हैं जो हमें लगातार प्रोत्साहित करते हैं कि हम आपके सामने और बहुत कुछ ऐसा लेके आए जो आपके मन, बुद्धि और आत्मा का विवेचन करे और आपको और ज्यादा जागृत करे, आपके जीवन में ऊर्जा का संचार लाए, आपके जीवन में प्रोग्रेस लेके आए। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है उपनिषद से रिलेटेड तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी डॉक्टर शीशम अग्रवाल के नाम से। Red FM पॉडकास्ट पेज पर आप DM कर सकते हैं, फेसबुक पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं शीशम बंसल के नाम से मिल जाऊंगी। Red FM पॉडकास्ट पेज पर आप हमें मैसेज करिए, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर हम प्रस्तुत है, वहां पर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। बहुत सारे लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर गाना, स्पॉटिफाई, Red FM का अपना एक ऐप है, आप वहां पर इन पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। इन पॉडकास्ट को सुनिए, इन लिंक्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने प्रियजनों तक भेजिए, व्हाट्सएप पर इनको सर्कुलेट करिए ताकि बहुत सारे और लोग भी इनके साथ जुड़ पाएं और अपने जीवन को लाभान्वित कर पाएं। अगर आप इस ज्ञान को और ज्यादा अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं तो मेरी बहुत सारी बुक्स अमेजोन पर अवेलेबल हैं, ओम ब्रह्मांड का नाद, मेरे फिक्रे, मेथड टू मैडनेस, और कुछ नई बुक्स भी रिलीज हुई हैं, कैसे निहाओ, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। कुछ पोइट्री की बुक्स भी हैं, अंतिम लिखाई, जहाँ पर जीवन को और ज्यादा उसके प्राकृत्य में समझाया है। बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो हमें सालों से करने को बोला जाता है परंतु हमें उसके पीछे का सिद्धांत नहीं पता या उसे किस तरह से करना है हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो जब आप ये पुस्तक पढ़ेंगे कैसे निहाओ, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे आपको और ज्यादा ज्ञान होगा, आप अपने जीवन में उन चीजों को उतारेंगे और ज्यादा लाभान्वित महसूस करेंगे। इसी मंगल कामना और आशा के साथ हम आपसे मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।
यू आर लिसनिंग टू उपनिषद्स सिंप्लीफाइड बाय डॉक्टर शीशम अग्रवाल ऑन द रेड पॉडकास्ट नेटवर्क।